ओम शांति, ओम शांति। दीदी जी हमारे बीच में उपस्थित है और हम दीदी जी का, दीदी जी ये सब फरिश्ते आपका स्वागत करते हैं। देखो एक ही दिन में कितना फर्क पड़ गया दीदी जी, हाँ सब एकदम फरिश्ते बन के चल रहे, भोजन कर रहे हैं, क्लास में आ रहे हैं और दीदी जी का फिर से आपके मन में कई संकल्प कई प्रश्न होते हुए तो हम सोच रहे कि आज आपके बीच में ही कुछ प्रश्न आए हैं और वो हम दीदी से पूछेंगे, दीदी उत्तर देंगी। तो सबसे पहले क्योंकि दीदी जी का परिचय तो हो चुका है, 1962 में उषा बहन व रमेश भाई जी के द्वारा आप एक साधारण रूप में मुंबई में एक सेंटर था वाटरमूल, उसमें जिज्ञासु के रूप में आए और उस समय देखो कितने भाग्यशाली दीदी थी। उस समय ब्रह्मा कुमारी संस्था की प्रथम प्रशासिका जगदम्बा सरस्वती, उनकी पालना दीदी को मिली। देखो वो प्रथम प्रशासिका थी और आज उसी संस्था की आप संयुक्त मुख्य प्रशासिका बनी दीदी जी। आपने कभी सोचा था कि एक मुख्य प्रशासिका उस समय आपको मिली और आज के दिन आप खुद ही इस संस्था की संयुक्त प्रशासिका के रूप में, तो कैसे आपको कैसे लग रहा है ये चीज देखने में?
हम ड्रामा को साक्षी बनकर देखते हैं, कभी स्वप्न में भी नहीं था कि हम ब्रह्मा कुमारी बनेंगे या भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनेंगे, पर भाग्य में था तो इसलिए संस्था के संपर्क में आई, स्टडी शुरू कर दी, पढ़ाई पढ़ने लगी और दिन प्रतिदिन उन्नति होती रही।
लेकिन ये जो 60 साल निकले, इस 60 साल के दरमियान आपने विशेष कौन सा पुरुषार्थ किया जो आप इतनी ऊंच जगह या इतना प्रशासक के रूप में आप पहुंचे? आपने विशेष अंदर से कोई पुरुषार्थ तो किया है दीदी?
पुरुषार्थ तो चलता ही है, क्यों, आत्मा का ज्ञान था पर आत्मा अभिमानी कभी नहीं थे और भगवान को मानती थी परंतु जानती नहीं थी, तो याद करने का पुरुषार्थ करना पड़ता है और याद से शक्ति आती जाती है। विशेष हमने देखा कि 1940s 50s में जब मैं बड़ी हुई बंबई में, नए स्थान पर कभी अकेले नहीं जाते थे, हमारे साथ हमारा कजिन भाई भाई या चाचा या कोई ना कोई आता रहता था। तो ज्ञान में आने के बाद नेचुरली बाबा ने हिम्मत दी और दूसरा मैं शुरू से न्यारी तो थी पर बाबा ने न्यारा और प्यारा का बैलेंस सिखाया और बाबा की याद को बढ़ाने का पुरुषार्थ चलता ही रहा है और अभी भी चलता है।
दीदी जी, हम आपके परिवार के बारे में जानना चाहते हैं कि आपका परिवार तो बहुत संपन्न था, आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके जो परिवार है, उस जमाने में दीदी के पास दो दो गाड़ियां थी, तो आप परिवार के बारे में थोड़ा 5 मिनट हमको थोड़ा बताइए सबको।
परिवार धार्मिक कृत्य का था। मेरी लौकिक माता रोज मंदिर में सेवा, फूल की सेवा करने जाते थे और ऐसे धार्मिक प्रसंग होते थे, हम लोग बच्चे भी जाते थे मंदिर में। और वो वैष्णव थे तो हमारे लौकिक घर के सामने ही एक माता अपना वैष्णव घर में मंदिर चलाती थी, तो वहाँ भी जाते थे। पिताजी सत्संग में भी ले जाते थे तो मूवी में भी ले जाते थे, तो हर सैटरडे कोई ना कोई मूवी में या म्यूजिक कंसर्ट है या बॉक्सिंग मैच है उसमें जाते थे। हर संडे परिवार सहित हम लोग कार में बीच पर घूमने जाते थे। तो जैसे लौकिक जीवन था, हर वैकेशन में अप्रैल मास में, मई मास में हम लोग एक मास कभी नासिक, माथेरान, महाबलेश्वर आदि आदि स्थानों पर जाते थे। मतलब परिवार में प्यार था और प्यार से सेवा करते थे।
पिताजी क्या करते थे?
मेरे पिताजी बिजनेसमैन थे, कटाव मिल्स में सेल्स मैनेजर थे और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर भी थे। राज कपूर की हर एक फिल्म उन्होंने स्पेशली बम्बई में डिस्ट्रीब्यूट की।
दीदी, आप इतने संपन्न परिवार की थी और पिताजी इतने बड़े बिजनेसमैन थे, फिर भी आपने एक डिसीजन लिया ब्रह्मा कुमारी बनने का, तो परिवार वालों ने कुछ विरोध नहीं किया आपको?
वैसे भी धार्मिक परिवार था परंतु वैष्णव थे, तो माँ बाप मानते थे लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए, देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। एकदम कैसे निराकारी की पूजा शुरू कर दी तुमने। दूसरा, उन्हों को हमने मामा बाबा से मिलाया दोनों को, और जगदीश भाई ने हमारे पिताजी को प्रदर्शनी भी समझाई पर कहे नहीं, मैं नहीं मानूंगा। और जब कांदीवली में हमने सेवा शुरू की तो जब भी हम एग्जीबिशन करती थी या कुछ करती थी उनको बुलाती थी तो आते थे, परंतु कहते थे तुमको खुश करने के लिए, बाकी मैं कोई तुम्हारी बात मानता नहीं हूँ। और कोशिश की उन्होंने कि क्योंकि बिजनेसमैन थे मुंबई में तो सिंधी बिजनेसमैन के संपर्क में आते थे, जो कहते थे आपकी लड़की ब्रह्मा कुमारी में गई, अभी शादी नहीं करेंगे, पैसा लूट के जाएंगे आदि आदि। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसी बात है और उनका एक मित्र था, बहुत शास्त्रवादी पढ़ा हुआ था, उनको बुलाकर कहा कि देखो इन्हीं के ये सच्ची गीता है, आप क्या समझते हैं। तो उस भाई ने हमारी सच्ची गीता की किताब पढ़ी और कहा ये तो ठीक नहीं है, शास्त्रों के विरुद्ध है। मैंने कहा आप आके देखिए सेंटर पर, आपको कुछ खराब लगे तो मुझे कहना। तो उन्होंने कहा नहीं तुम पढ़ी लिखी हो, इंडिपेंडेंट हो, डॉक्टर हो, तुम कमाई कर सकती हो, तुम जो डिसाइड करो। क्योंकि जब हमने मैट्रिक पूरी की 17 साल में, तभी भी पहले तो लड़का ढूंढना शुरू किया, क्योंकि हमारी सब बहनों की 17 उम्र में सगाई हुई और 19 साल में शादी हुई। मैंने पिताजी को कहा कि देखो या तो मैं मेडिकल स्टडी करेंगी या तो शादी करेंगी, क्योंकि पढ़ाई में मैं होशियार थी और उनका भी लक्ष्य था कि भाई डॉक्टर बनूं। तो मैंने कहा कि मेडिकल स्टडी और शादी दोनों साथ में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक बार सगाई करते हैं फिर कहेंगे जल्दी जल्दी शादी करो, शादी की बच्चे पैदा हो गए, फिर कहेंगे बच्चों को संभालो, सब व्यवहार है रिवाज है उसमें जाओ आदि आदि। क्योंकि मेरी भाभी भी डॉक्टर थी, पर उसने प्रैक्टिस बाहर नहीं की, घर में ही की, पहले बच्चे फिर प्रैक्टिस। तो इसलिए मैंने कहा मैं नहीं करूंगी ऐसे। तो कहा ठीक है तुम्हारी मर्जी।
और सबसे बड़ी बात है कि उन्हीं के पिताजी ने यज्ञ में सबसे पहले जो दहेज में सेंटर दिया इनके पिताजी थे। तो ये भी देखो कितनी कमाल की बात है कि दीदी ने उनके अंदर धीरे 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 परिवर्तन पूरे परिवार के अंदर कराया और धीरे धीरे दीदी आगे बढ़ती गई। दीदी जी आपने मतलब करीब करीब सारे विश्व में चक्कर लगाया, बहुत सारी जगह सेंटर खोले और बहुत सारे स्टूडेंट बने, लेकिन जिसको आप सभी जानते होंगे जैसे कि मुंबई में पार्ला सेंटर पे योगिनी दीदी है, सांता क्रूज में मीरा दीदी है, बोरोली में दिव्या दीदी, ये लोग आते हैं, बड़े बड़े जोन बने हैं उनके। जब वो आपको मिलने के लिए आते हैं यहाँ, तो आपको क्या कुछ अलग से भाषण तो आती होगी, ये हमारे स्टूडेंट देखो क्या कितने बड़े हो गए, कितने बड़े स्टूडेंट बनाए उन्होंने, तो आपको क्या उनसे महसूस था या क्या कुछ अनुभूति या कुछ तो होता होगा ना दीदी?
क्या है, हमने तो निमित्त बन के बाबा की सेवा की, तो हमारे स्टूडेंट नहीं बाबा के स्टूडेंट है। दूसरा ये उनका हमारे लिए बहुत रिगार्ड है, और जब ये भी बम्बई से आते हैं तो कुछ न कुछ ले आते हैं और पूछते भी रहते हैं कुछ चाहिए कुछ भेजना है आदि आदि। और यहाँ की प्रतिभा बहन म्यूजियम की वो भी कांदीवली से निकली है, तो वो भी जब भी कुछ अच्छी खाने की चीज बनाती है तो भेजती रहती है। तो इसी रीत से प्यार और रिगार्ड रहता है।
आपसे ज्यादा उनको नशा होता है दीदी कि हमारी दीदी है करके, ये जब भी आते मिलते हैं। दीदी मुरली के बीच में कई बार आता है निर्मल आश्रम, अभी सबको तो पता नहीं लेकिन मतलब नाम आता है, लेकिन कैसे शुरुआत हुई उसके बारे में थोड़ा बताएंगे दीदी।
बाबा की परख शक्ति बहुत तेज थी, और जब हम आते हैं थे मधुबन में, मामा की गोद में जाते थे, तो मामा उससे परख सकते थे कि कितनी पवित्रता है, क्योंकि जिनको प्यार की चाहना होती है वो कैसे मिलते हैं, और जो संपन्न है वो कैसे मिलते हैं। बाबा को तो समझ में आता है, तो बाबा ने हमारी चाल चलन बोल चाल सब देखकर, जब भी पत्र लिखते थे तो कुछ न कुछ टाइटल लिखते थे, सरल है, निर्मल है, सच्चाई है, सफाई है और पवित्रता है, तो इसलिए निर्मला भी क्लीन और आश्रम भी पवित्र।
दीदी, आप इतने संपन्न परिवार के होने के बाद सेंटरों पे जाने लगी, देश विदेश पे जाने लगी, तो आपको बहुत कुछ त्याग तो करना पड़ा होगा ना दीदी, क्योंकि एकदम कई सेंटरों पे सारी व्यवस्था भी नहीं होती, खुद जाके सेंटर खोलना, तो उसका कुछ एक अनुभव सुनाओ दीदी, जो आपको मतलब खुद जाके वहां किसी के घर में रहना, फिर सेवा करना, फिर सेंटर बनाना।
क्या है कि सबसे पहले हमने लंदन में सेंटर शुरू किया, वो सबसे थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि बिल्कुल अलग कल्चर, वहाँ जैसे प्यार तो ओपन में करते हैं, भाई की गोद में यानी युगल की गोद में वो लड़की बैठ जाती है, ट्रेन में भी आपस में किस करते रहते हैं, हग करते रहते हैं आदि आदि, और जब हम न्यूयॉर्क में लौकिक कॉन्फ्रेंस में गए थे 71 में जुलाई में, अब उन्होंने की जो रिट्रीट सेंटर था, खाना हम लोगों को पकाना पड़ था, वो हम लोगों को साधन दे देते थे, खाना हम पकाते थे, मैं और रमेश भाई थे, तो क्या था कि जो बाथरूम वहाँ की होती थी ना, टॉयलेट अलग बाथरूम अलग, और बाथरूम में सिर्फ तीन तरफ दीवार जो बाहर की तरफ खुला, तो वो तो बहुत देही अभिमानी होते हैं, विदेश कपड़े उतार कर चलते चलते गुड मॉर्निंग करते चले जाते हैं, तो ये भी थोड़ा विचित्र था। और इंडिया में तो नए नए सेंटरों में भी माताएं होती है, हमने जब सेंटर शुरू किया उस समय ऑलरेडी 15-20 स्टूडेंट तो थे ही, तो कभी न शॉपिंग करनी पड़ती थी, कुछ नहीं करना पड़ता था। हाँ, उन दिनों में हम अपने कपड़े धुलाई कर लेते थे, वॉशिंग मशीन नहीं थी, तो 66 में शुरू किया सेंटर, तब तो माताओं को थोड़ा दुख होता था कि बहन जी इतने बड़े घर से आई है, उनको खुद को हाथ से कपड़ा धोना पड़ता, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो इसलिए विदेश में तो शॉपिंग भी करो, घर की भी सफाई करो, खाना भी पकाओ। और शुरू शुरू में जाते हैं, पहले तो हमको एक दो मास तक तो मकान ही नहीं मिला लंदन में, क्योंकि जिस मकान मालिक ने वायदा किया था उसका दूसरा मकान बन रहा था, वो मकान तैयार नहीं था, तब तक वो शिफ्ट नहीं करता था, वो शिफ्ट नहीं करे तो हम नहीं जा सकते थे। तो तब तो ब्राह्मणों के परिवार में रहना पड़ा। तो एक मास कभी लंदन में रहती थी, कभी स्लाव में, कभी इल्फर्ड में, ऐसे अलग अलग स्थानों पर रहती थी, विशेष इल्फर्ड और स्लाव में। तो इसी रीत से शुरू में तो मेहनत करनी पड़ती है, और नया स्थान। एक बारी तो कोई भाई आकर साथ में ले जाता था प्रवचन के लिए, पर पीछे कहता था आप आ जाना स्टेशन पर, मैं मिलूंगा। तो इसी रीत से अकेले भी जाना पड़ता था, बस ट्रेन में जाना होता था क्योंकि उस समय कार भी नहीं थी। फिर अंग्रेजी में तो हमने मीडियम में सारा मेडिसिन समझो यूनिवर्सिटी की स्टडी की थी, पर बोलने की आदत नहीं थी। और दूसरा उन्होंने प्रोनंसिएशन ऐसे होता था समझ में नहीं आता था, तो भाषण तो कर लिया, फिर वो लोग प्रश्न उत्तर करते थे। तो जो वो भाई या बहन साथ में होती थी लोकल, वो उनको कहती थी आप रिपीट करो प्रश्न, क्योंकि ज्यादातर इंडियन भाई बहने थे शुरू में, तो वो रिपीट करते थे, फिर चल जाता था। और जब सेंटर पर फोन आए तो भी कभी समझ में आए, कभी नहीं समझ में आए, और अकेला रहना। और हम ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, हमारे पास एक सिटिंग रूम, एक क्लासरूम और एक बेडरूम और किचन, बाथरूम टॉयलेट ऊपर, और वो ऊपर का फ्लैट था। दो वेस्ट इंडियन भाई थे तो कॉमन था, पर हम तो 4 बजे में स्नान करते हैं इसलिए उसमें तो हर्जा नहीं आता था। परंतु खाना पकाए मच्छी मीट आदि तो बांस तो आए, परंतु चलाना पड़ता है, किराएदार है। तो लकीली लैंडलॉर्ड हमारे साथ नहीं रहता था, नहीं तो लंदन में उन दिनों में लैंडलॉर्ड कहे रोज क्या स्नान करना है, ठंडी में रोज क्या स्नान करना है, हफ्ते में लोग एक बार स्नान करते। और 4 बजे स्नान करना माना ऊपर स्नान करते तो नीचे वाले को डिस्टर्ब हो
जाता है,
डिस्टर्ब हो। पर हमारा अच्छा था कि हम नीचे रहते थे और हमारा टाइम ही अलग था। मतलब कई शहरों में जब गए, सेंटर नहीं था, किसी के घर में रहना पड़ा, तो ऐसे चलता रहा। परंतु बाबा की मदद थी, ये जरूर है कि हमने सेवा करते रहे।
उन दिनों में ब्रह्मा कुमारी संस्था में कुछ ही गिने चुने इंग्लिश जानने वाले थे। इस कारण हर जगह जहाँ भी विदेश की सेवा होती थी दीदी जी को जरूर जाना ही होता था, क्योंकि इंग्लिश हैंड्स है। लेकिन दीदी हम ये पूछना चाहते कि ब्रह्मा बाबा को, क्योंकि आप मामा की पालना ली, बाबा की पालना ली, लेकिन ब्रह्मा बाबा के साथ आपका पहला मिलन, पहली बार कैसे मिलन था? क्योंकि हम तो सभी ने ब्रह्मा बाबा को, किसी ने देखा है? हाथ उठाओ। अच्छा, एक बहन है, बाकी आपने मम्मा बाबा की पालना ली है और आपकी पालना हम लोग ले रहे हैं। तो बाबा के साथ का पहली बार मिलन का जो अनुभव है उसके बारे में थोड़ा बता।
बाबा को मैं पहली बार ही 1 साल 5 मास के बाद मिली। मम्मा को पहले दिन मिली क्योंकि उस समय मम्मा 9 मास मुंबई में थी, पर ब्रह्मा बाबा को जब मैं मधुबन आई मई मास में तब मिली। तब तक तो पत्र व्यवहार चालू था, तो ऐसे नहीं लगा जैसे कोई नई व्यक्ति को मिल रही हूँ। कल्प पहले वाले ही हमारे पिता हैं, वो सच्चे पिता हैं, क्योंकि हमारे लौकिक पिता की भी मैं लाडली थी, अच्छा पढ़ती वगैरह थी। तो पर ब्रह्मा बाबा से मुझे उनसे भी ज़्यादा प्यार था और उनकी राय लेकर मैं सब कुछ करती थी, स्पेशली जीवन में जो भी फैसला करना होता था उनकी राय से करती थी। तो जैसे फर्स्ट टाइम मिली, हम निर्मल शांता दादी के साथ यूपी पंजाब का टूर किया और अंत में मधुबन आए। तो बाबा से ऐसे मिलना हुआ जैसे कल्प के बाद बिछड़े हुए बच्चे बाप से मिलते हैं। और उन दिनों में संदेशी के तन में भी मम्मा बाबा आते थे और राखी के दिन हमेशा हमारे पास संदेशी थी, पुष्प शांता दादी और शिलेंद्रा दादी, तो कोई न कोई भोग लगाते थे और संदेशी बनकर प्रिंसेस को बुलाते थे और वो प्रिंसेस हमको राखी बांधती थी। और जन्माष्टमी के दिन हम लोग सेंटर पर रात को 10-10:30 तक पहुंच जाते थे, 12 बजे तक योग करते थे और कृष्ण आता था। तो संजो संदेशी द्वारा बाबा को मिले, शिव बाबा को। फिर बाबा ने कहा पीठ पर हाथ लगाकर, हाची भक्ति करते धक्के खाते खाते थक गई हो, आओ, प्यार किया। तो इस रीत से बाबा से भी हमने पहली मुलाकात में मम्मा से भी पूछा था, पर मम्मा ने कहा कि नहीं बाबा से पूछना, कि मेरा विचार नहीं है मेडिकल प्रैक्टिस करूं, मैं बाबा की सेवा में लग जाऊं। तो मम्मा ने कहा बाबा से पूछना, तो बाबा से पूछा। बाबा ने कहा नहीं, तुमको तो डबल डॉक्टर बनना है। फिर मेरे लौकिक पिताजी की इच्छा थी मैं बम्बई में ही कांदीवली में ही प्रैक्टिस करूं, क्योंकि वो सोशल वर्कर थे कांदीवली में, उन्होंने एक दो स्कूल का नवनिर्माण किया, तो उनकी इच्छा थी मैं कांदीवली में ही सेवा करूं मेडिकल प्रैक्टिस, और मेरी इच्छा थी कि बम्बई में तो बहुत डॉक्टर है, मैं कुछ छोटे गांव में जाऊं। तो मैंने बाबा से पूछा, बाबा क्या करूं? बाबा ने कहा कांदीवली भी गावना है ना। तो फिर मैंने संकल्प नहीं चलाया और कांदीवली में ही सेंटर भी ढूंढा और डिस्पेंसरी के लिए जगह भी ढूंढी।
अच्छा दीदी जी, आप मम्मा की पालना ली, बाबा की, प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी, गुलजार दादी, जग सब, जैसे जगदीश भाई, रमेश भाई, उषा बिन, सब धीरे 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 आपको छोड़ के गए, है ना? तो सबसे ज्यादा आपको दुख कब हुआ कि कौन से दादी या बाबा या मम्मा शरीर छोड़ा, तब आपको सबसे ज्यादा फीलिंग?
सबसे ज्यादा हमको कहेंगे दुख हुआ, या उस समय हम लोगों को प्रश्न था, ब्रह्मा बाबा चले गए, अभी हमको मुरली कैसे मिलेंगे? तो ये हम लोगों को चिंता थी। तो इसलिए जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो आंसू तो नहीं आया, हमको 9:30 समाचार मिला, हम लोगों ने आधा घंटा योग किया और दूसरे दिन सवेरे हमारी दोनों साथियां जो सेंटर पर रहती थी वो चल पड़ी आबो के लिए। पहली ट्रेन पकड़ के, उन दिनों में हम लोग फ्लाइट भी नहीं जाते थे। तो फिर जब बाबा का संदेश मिला कि मुरली आपको यही रिवाइज करनी है, अव्यक्त भाव राधा से मुरली मिलेंगी और दीदी दादी अभी यज्ञ चलाएंगी, सब क्लियर हो गया तो सब शांत हो गए। तो इसलिए 21 तारीख की मुरली में बाबा ने क्लियर किया, तो दादी ने देखा कि ये तो सब क्या सवाल पूरा हो गया। फिर जो नई भी दादियां आई थी उनको बुलाया, आओ आओ आओ, मधु बनाओ, रिफ्रेश होके जाओ, और सब बाकी कभी एक दो आंसू आए होंगे, नहीं रोना नहीं आया है। और दूसरा, जब उषा ने शरीर छोड़ा तो हमको कहा तुम अपना अनुभव सुनाओ या कुछ सुनाओ, तब मैं कहा मैं नहीं बोल सकेंगे।
उषा रमेश जो अपने सीए थे ना, क्योंकि वही निमित्त बने थे दीदी का कोर्स आदि कराने के।
नहीं, कोर्स नहीं कराया, सेंटर पर बुलाया,
सेंटर पे बुलाया था
और मम्मा से मुलाकात कराई। मतलब नहीं बोल नहीं सके।
अच्छा दीदी जी, सबके जीवन में कोई ना कोई परिस्थिति आती है, बीमारी आती है, तकलीफें आती है, ऐसा नहीं कि बड़ों को नहीं आती। तो दीदी को भी एक बहुत बड़ी भयानक बीमारी, जो सारे विश्व में कई 1-2% को ही होती है ऐसी बीमारी, तो ऐसी दीदी को
1% नहीं, 10 लाख में 1-2 होते हैं।
10 लाख में 1-2 ऐसा मतलब बीमारी होती, तो ऐसे बीमारी के से आपने सामना किया, अपनी ऐसे समय कैसे वो समय आपने बिताया, क्या क्या तकलीफें हुई, बाबा ने आपको क्या मदद की?
क्या है कि थाईलैंड में थी और ये बीमारी हो गई, ऐसे पैरालिसिस हो गया, पांव हाथ नहीं चलते थे, और वहाँ तो बीमारी नहीं पहचान सके डॉक्टर्स, उन्होंने समझा कि नर्व पर प्रेशर है इस कारण ऐसा होता है कि चल नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती आदि आदि। फिर यहाँ आए तो थाईलैंड का जो बड़ा डॉक्टर ट्रीटमेंट करता था वो भी साथ में प्लेन में आया, थाईलैंड की एक बहन भी साथ में आई। उन दिनों में मैं अकेली ट्रैवल करती थी, तो वो भी बहन भी हमारे साथ आई, मुंबई में हॉस्पिटल में एडमिट किया, और यहाँ आते एक दिन में ही डॉक्टर ने डायग्नोस किया, परंतु उसकी ट्रीटमेंट में उनको शॉक देना पड़ता था, बहुत दर्द होता था, और आईसीयू में थे। तो बम्बई में उस समय पहले हमको प्राइवेट रूम नहीं मिला, तो जनरल वार्ड में आईसीयू में थी, और रात भर कोई ना कोई चिल्लाते रहते थे, रात भर आना जाना, कोई मरता था, कोई इमरजेंसी वाला आता था, कोई पागल होता था वो भी चिल्लाते रहते थे। मतलब समझो पैरालिसिस इतना हो गया था, मैं साइन नहीं कर सकती थी, अपने हाथ से खा नहीं सकती थी, खड़ी नहीं हो सकती थी, तो जैसे हाथ और पांव चलते नहीं थे। मतलब एक्सरसाइज करके चलना सीखना पड़ा, खड़ा रहना सीखना पड़ा, लिख लिख कर प्रैक्टिस करके लिखना सीखना पड़ा आदि आदि। पर बाबा की मदद रही, डॉक्टर्स भी अच्छे थे, और योगिनी की हॉस्पिटल थी, तो कोई न कोई बहनें साथ में रहकर खिलाती पिलाती, नर्सें स्नान कराती थी।
यही कहेंगे दीदी को जैसे कि नया जन्म, क्योंकि इतना मतलब बीमारी और ऐसी परिस्थिति में एक बाबा एक भरोसा, और दीदी के व्यवहार के कारण, सेवाओं के कारण दीदी को हर जगह मदद मिली, प्यार मिला, स्नेह मिला। ये टाइम कितना लगा दीदी पूरा बीमारी को आपको पूरा निकलने के लिए? इससे
कम से कम 2 मास लगा।
2 मास हो गया। अच्छा दीदी, मम्मा बाबा के समय योग तपस्या के तो कार्यक्रम होते होंगे, उसकी जैसे अभी हमारा जैसे योग तपस्या की ये रूपरेखा है, तो उस समय क्या रूपरेखा होती थी?
मेरे सामने अलग थी, क्योंकि जब 14 साल यज्ञ में जिन्होंने व्यतीत किए पुरानी दादियां वगैरह, तो उनके लिए तो ज्ञान योग के सिवा कुछ नहीं था, और कई दादियां क्या करती थी, ग्रुप बनाकर योग करती थी, कोई अकेली रहती थी, कभी कोई आपस में एक दो के दृष्टि देते थे आदि आदि, कभी बाबा रात को रात भर योग कराते थे वी शेप में सुलाकर, बाबा दृष्टि भी देते थे और श्मशान बना देते थे। तो अनेक प्रकार से बाबा योग तपस्या उन दिनों में कराते थे, पर हमारे समय में मतलब 60s से हम लोग तो 4-5 दिन के लिए मधुबन में आते थे, मैक्सिमम हफ्ता रहते थे, और ज्ञान योग ये होता तो रहता था क्योंकि बाबा के सिवाय तो और कोई क्लास ही नहीं कराता था। सब बाबा के क्लास के लिए आतुर होते थे, तो सवेरे मौली सुनाते थे, रात को रात्रि क्लास होता था। और 68 तक तो बाबा अमृत वेला भी नहीं कराते थे। मौली के बाद चैम्बर होता था और हम लोग क्या करते थे हमारे टाइम में, भोजन के बाद हम बाबा के कमरे में जाते थे क्योंकि उस समय बाबा जो कोई होता था तो खेल करना चाहते थे तो ताश खेलते थे या चौपट खेलते थे, तो हम साक्षी होकर देखते थे। और शाम को 5:30 के करीब जाते थे बाबा के कमरे में, उस समय बाबा फ्री होता था आंगन में लेटा हुआ। उस समय आंगन मतलब पूरा खुला नहीं होता था, बाबा के बाहर जहां हम जूते निकालते हैं अभी नहीं, उसके भी बाहर समझो अंदर बीच वाला जो पोर्शन था, तो उसमें समझो 3 तरफ से वॉल थी, ऊपर से खुला होता था और बाबा खटिया पर लेटे हुए होते थे और हम जाकर वहाँ थल्ला था वहाँ बैठते थे और बाबा कुछ न कुछ ज्ञान सुनाते रहते थे।
तो ये डायरेक्ट जैसे बोलते हैं ना कि मटका जो तैयार करने वाला है, डायरेक्ट शिव बाबा के द्वारा ब्रह्मा बाबा उन्होंने दीदी को तैयार किया है ना। एक हमारी जो टिकम दीदी थी जो चंद्रमन दादी की सिस्टर जो बेंगलोर में, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा अनुभव सुनाया था कि बाबा के पास गई, बाबा को बोला बाबा मुझे नींद बहुत आती जब ये मुरली चलती, तो बाबा ने कुछ उनको बताया कि तुम नींद पे जीत नहीं पा सकते ऐसा कुछ बताया, तो उसके अंदर ऐसी इतना पावर आ गई, उसने कहा कुछ भी हो जाए मुझे नींद पे जीत पाना है। तो वो जो हिस्ट्री हॉल है उसके ऊपर जाके बैठ जाती थी और बहुत खूब बाबा को याद करते करते, फिर एक बार बाबा करीब 12 बजे जग गए और लच्छी दी दादी को बुलाए कि बच्ची कुछ हो गया इधर, कोई मुझे याद करा है, ढूंढो कोई तो है यहाँ। तो फिर बाबा ने ढूंढा तो वो बच्ची मतलब वो टिकम दादी वो छत पे बैठी थी और तपस्या कर रही थी। तो कैसे मतलब बाबा की कैसी प्रेरणा मिलती है और बाबा को कैसे टचिंग हुआ कि भाई मेरी बच्ची मेरे मुझे याद करी है, तो ऐसे बहुत सारे अनुभव है। जैसे दीदी ये अपनी तपस्या चल रही है, वैसे आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड अलग अलग जगह पे भी योग भट्टियां तो करते होंगे, वहां कैसे स्वरूप होता है ये?
क्या है शुरू में क्या होता था कि हर सेंटर पर सैटरडे शाम को और संडे शाम को, सैटरडे होता था ज्ञान का वर्कशॉप और संडे होता था 2 घंटा योग, ये होता ही था। अभी क्या है रिट्रीट सेंटर बन गए, तो जहाँ जहाँ रिट्रीट सेंटर है वहाँ ये तपस्या चलती। और अभी जब कोरोना काल था तो क्या था, वो लोग तो जूम पर योग करते थे और श्रीलंका में उन्होंने प्लान बनाया कि रोज एक एक बहन है या भाई है उसको टर्न दे दिया था कि आपको योग कमेंट्री करनी है, स्लाइड्स तैयार करनी है। और 2 घंटा 4 घंटा कभी कभी ऐसे फिक्स करते थे कि मास में हमको 108 घंटा करना है आदि आदि। तो हर एक देश में अपना अपना चलता है। तो संजो योग में सबको बहुत इंटरेस्ट है और उनको अनुभव भी अच्छे अच्छे होते हैं। इस द्वारा ही अनुभव के आधार पर ही विदेशी चल पड़े हैं, क्योंकि विदेशियों को नया धर्म अपनाना, नई कल्चर, जो सवेरे 9-10 बजे उठने वाले हैं वो 4 बजे उठना शुरू करें और 5 बजे 5:30 तक पहुंच जाए। ऐसे ऐसे परिवर्तन करना, नॉन वेज से वेजिटेरियन बनना, और नहीं तो उन्हों की फ्री स्टाइल थी जब 70s में हिप्पी स्टाइल, घूमते रहते, जब खाना है खाएंगे, जब सोना है सोनेंगे, स्नान करना है तो करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। भाइयों के भी इतने इतने बड़े बाल। तो समझो बहुत परिवर्तन किया उन्होंने। उनका एक कायदा है, करे तो पूरा झट को,
जाट को, नहीं तो नहीं करेंगे,
नहीं तो नहीं करेंगे बिल्कुल। तो समझो आते ही वेजिटेरियन बन जाते हैं, अपने हाथ से पकाते हैं, और जो घूमने फिरने वाले हैं सेटल हो गए। और जिन्होंने कई बार माँ बाप से भी इतना कनेक्शन नहीं रखा था, अभी माँ बाप से मिलते, उनसे बातचीत करते, उनसे लेन देन करते, तो समझो उनका परिवर्तन देखकर, पहले तो माँ बाप को होता था अरे गर्लफ्रेंड नहीं, पार्टियों में नहीं जाता, ये क्या सवेरे सवेरे इतना जल्दी उठना। परंतु फिर देखा कि सेंटर पर जाने से तो उनका ड्रग्स लेना, ड्रिंक्स लेना सब छूट गया, नहीं तो ड्रिंक ड्राइविंग करके फाइन लेके घर आते थे, कार को एक्सीडेंट करके लाते थे, माँ बाप को पैसा भरना पड़ता था। तो ये सब छूट गया, तो इसलिए फिर माँ बाप का बच्चों के लिए रिगार्ड रखा। और वहाँ फोर्सिंग करती है माँ कि मेरे हाथ का ही खाओ, अपने हाथ से क्यों पकाते हैं लड़के या लड़कियां, नहीं उनको अपना पकाना है अपना पकाओ खाओ।
दीदी मैं देख रहा था कि आप लंबे समय अकेले ट्रैवलिंग करते रहे। वैसे दीदी को हमारे क्या बोलते इकोनॉमी की अवतार है, मतलब कम से कम खर्चा, और अभी भी कहीं भी होता है जो खास सेवा होती है यज्ञ की सेवा उसके लिए खर्चा, लेकिन खुद के लिए बिल्कुल खर्चा नहीं करेगी। तो आप देश विदेश में अकेले चक्कर लगाना, कभी कभी बहुत तकलीफ भी होती, कभी फ्लाइट लेट होता है, कभी चेंज करना पड़ता है, कभी कभी 8-8 घंटा 4-4 घंटा आपको बैठना पड़ता है, तो ऐसे समय आप क्या सोचते हैं, सोचते थे पहले?
बस जो होता है ड्रामा में है हम ड्रामा को साक्षी बनकर देखते थे। पर क्या होता था, कई बार मेरी फ्लाइट टाइम से पहले पहुंच जाती। मैं लंदन में पहुंची तो क्या हुआ कि कुछ गड़बड़ थी, जिस कारण जिस वहां जो स्टॉप था बीच वाला कैंसिल किया, तो मेरी फ्लाइट टाइम से पहले पहुंच गई। और ठंडी के दिन थे, मोटा मोटा कोट पहनना होता है, जब तक कोई आवे ले जाए ठहरना पड़ता है। तो ज्यादातर तो हम पहले पहुंच जाते थे, बहुत कम बार हो गया होगा जो हमको एयरपोर्ट पर ज्यादा बैठना पड़ा हो। और आजकल तो बिजनेस क्लास में फ्लाइट करती हूँ, तो इसलिए लाउंज होता है, वहाँ आराम से बैठकर चाय पानी पीते।
जब हमारी प्रकाशमणि दादी जी, मोहिनी बहन गए थे, विदेश गए थे, तो क्या हुआ था कि दो तीन गेट तो होते बाहर निकलने के, तो सब स्वागत करने के लिए एक गेट पे खड़े हैं। दादी पहुंची उधर, कोई रिसीव करने के वाला नहीं है, तो धीरे धीरे वो बाहर निकले। वहां एक सरदार जी मिला, बोला हाँ मैं ब्रह्मा कुमारी को जानता हूँ, चलो चलो चलो। वो स्वागत करने वाले उधर ही रह गए और दादी जी सब सेंटर पे पहुंच गए, तो सब हैरान हो गए। तो कभी आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ, परिस्थिति ऐसी आई कभी?
बम्बई में ऐसे हुआ, क्या हुआ कि मैं एक गेट से निकली और वहां रास्ता देखती रही, और लेने वाले दूसरे गेट पर आए थे। पर बम्बई में तो मैं जानकार थी, तो जब 10-15 मिनट इंतजार करके, क्या है कि कई बार एयरपोर्ट से फोन करना भी मुश्किल, और रात में फोन करते हैं तो वो लोग भी सोए पड़े होते हैं, उठाते हैं नहीं उठाते हैं। फिर तो मैं टैक्सी करके पहुंच गई।
दीदी जी, यहाँ हमारे सामने मैं समझता हूँ 95% घर में रहने वाले, परिवार में रहने वाले, तो परिवार में रहते तो सब तो ज्ञान में नहीं चलते हैं, कभी कभी कटु वचन भी कोई बोलते हैं, कभी संस्था के बारे में बोलते हैं, कभी हमारे बाबा के बारे में बोलते हैं। ऐसे समय हम सभी ने कौन सी अवस्था या क्या करना चाहिए, ऐसे समय क्या सोचना चाहिए दीदी?
ये है, देखना है कि बाबा कहते हैं हियर नो इविल, एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना, दिल को दुखाओ नहीं, क्योंकि बोलने वाले तो बोलेंगे, बहुत सहन करना पड़ता है। कई माताओं को मार सहन करनी पड़ती है, कईयों को घरों से निकाल देते हैं, तो सामना तो करना पड़ता है। स्पेशली यदि युगल नहीं है, परिवार ज्ञान में नहीं है, तो सबका सामना करना पड़ता है, चाहे कन्या है, चाहे माता है, चाहे भाई भी है। कहाँ कहाँ ऐसे भी है कि भाई ज्ञान में है, युगल ज्ञान में नहीं है, वो भी तंग करती है। तो भाई भी बांधेले हमने देखे हैं। पर ज्यादा माताओं को सहन करना पड़ता है, क्योंकि कमाती नहीं है, डिपेंडेंट है, तो क्या करें, माँ बाप भी नहीं रखेंगे और पति भी नहीं रखेगा, तो जाए कहाँ, विदेश में तो अच्छा है, ये माताएं भी कब आती है, इंडिपेंडेंट है, तो माताएं चल पड़ती है, चलो हम मार नहीं सहन करेंगे, हम अपना घर नौकरी करके चलाएंगे। तो ऐसे भी होते हैं। तो क्या है कि जब निश्चय हुआ, हिम्मत है, तो सामना करते भी चलते रहते। जब निश्चय पूरा नहीं है या हिम्मत नहीं है तो फिर कईयों को ज्ञान भी छोड़ना पड़ा है। मुंबई में हमारे पास दो माताएं थी, बहुत सर्विसेबल, पर पतियों ने विरोध किया तो बैठ गई घर में। पर दो युगल ऐसे थे के लड़ते रहे और वो माता ने आकर पति को ज्ञान में लाया और वो भाई ने अपनी युगल को ज्ञान में लाया। वो भाई बहुत पक्का था, रोज क्लास में आता था और अपना नियम उसने पक्का किया। उसकी युगल एक बार पटरी पर जाके सो गई, दूसरी बार केरोसिन डाला अपने ऊपर, माचिस लगाती थी उसके पहले उसको बचा लिया, और वो भी कुछ साल के बाद ज्ञान में आ गई। और ये पति हमारे सामने आया सेंटर, किस शास्त्र में लिखा है वो शास्त्र पढ़ा लिखा था और संस्कृत में बातचीत कर सकता था। तो हमारी युगल को नहीं आने दो। मैंने कहा देखो भाई, ये है मंदिर, मंदिर में पुजारी नहीं कहेंगे कि भगत तुम नहीं आओ, तुमको तुम्हारी बीबी को नहीं आने देना है तो तुम घर में बिठाओ, बाकी मैं नहीं ना कहूंगी। और वो आखिर ज्ञान में आ गया।
दीदी, यहाँ सभी लोग अमृत वेला बहुत अच्छी तरह से कर रहे, तो यहाँ तो बहुत सहज है, लेकिन जब घर में जाते हैं थोड़ा आलस आ जाता है, आलस आ जाता है। आपको आता है आलस?
आजकल थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रहती है तो
अच्छा
तकलीफ होती है।
तो आलस भगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम सबके लिए कुछ प्रेरणा दीजिए।
क्या है कि लक्ष्य रखना है, यही हमारा कमाई का समय है। कमाई के समय सोते रहेंगे खोएंगे, जिन सोया तिन खोया, जिन जागा तिन पाया। तो बाबा हमें युक्ति बतलाते हैं, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो और अपने को फ्रेश रखने के लिए उठकर स्नान करो, चाय पानी पियो, थोड़ा पैदल करो। और कभी कभी नींद आती है, उठकर मुरली पढ़ो, ज्ञान का मनन चिंतन करो। तो इसी रीत से जितना हम अपने आप पर अटेंशन रखेंगे तो क्या होगा, अलर्ट रह सकेंगे। अलर्ट रहना है, सिर्फ उठना नहीं है, अलर्ट भी रहना है। तो समझो इसके कारण, समझो हमें देखना है कि हम अपनी कमाई में चाहे पढ़ाई है चाहे योग है, उसमें हम घाटा ना डालें, क्योंकि ये अविनाशी कमाई है। और अटेंशन नहीं रखने से या दृढ़ता नहीं होने से हमें बहुत घाटा पड़ सकता।
दीदी और एक बात है कि मुरली की बात, जब भी हम आपको देखते, आपकी तबीयत भी कभी कभी खराब होते तो भी आप मुरली नहीं छोड़ते, मुरली सुनाने जरूर आते। आपको कहेंगे नहीं दीदी आज के दिन नहीं, लेकिन तो ये मुरली में इतनी कैसी पावर है, उससे कितनी शक्ति मिलती है, हम सबको थोड़ा उसका अनुभव बताओ, जो हम लोग को भी मुरली के प्रति प्यार जागृत हो।
देखो कहते हैं तीन रतन पाए बाबा बुधवन मुरली, तो मुरली के एक एक शब्द बाबा कहते हैं लाखों रुपये के है। तो जब इसकी वैल्यू मालूम पड़ेंगे, क्योंकि सुनेंगे मनन मंथन धारण करना सहज हो जाएगा, तो इसलिए हमें देखना है मुरली न मिस करनी है न उस समय अपने को रिलैक्स करना है, क्योंकि कई है ना ऐसे करके बैठते हैं तो क्या होगा, हाँ ऐसे करके बैठेंगे तो नींद आ जाएंगे, क्योंकि सवेरे सवेरे जल्दी उठे हैं, कोई तो 2 बजे से उठकर स्नान करके, क्योंकि कमरे में 8-10 जने हैं, 8 जने होते हैं, सबको स्नान करना है। तो हमारी कई बहनें तो कंप्लेन करती थी किसी की 1 बजे घंटी बजती है अलार्म के, 1:30 बजे घंटी, तो 2 बजे घंटी बजती है, एक के बाद एक घंटियां बजती रहती है। तो क्या है कि नेचुरली है जल्दी उठे हैं तो फ्रेश नहीं भी रहते हो, परंतु ये देखना है कि अपने को फ्रेश करना है, इसलिए यहाँ तो एक्सरसाइज भी कराते हैं 6 से 6:30। तो एक्सरसाइज करने से दोनों बात हो सकती, शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा और मन भी फ्रेश हो जाएगा। तो इसलिए अपने पर बहुत अटेंशन देना है कि हम मुरली न मिस करें, न मुरली के टाइम उबासी खाएं या सोए। बाबा कहता है मुरली के टाइम उबासी जो खाते हैं ना, इसका मतलब इंटरेस्ट देंगे। तो इसलिए जब कमाई होती है तो लोग रात भर भी जागते हैं, आजकल देखो ना रात की शिफ्ट होती है, कई लोग रात को जाकर दिन में सोते हैं, परिवार को भी कभी मिलते हैं नहीं मिलते हैं, क्योंकि कमाई होती है। रात की शिफ्ट में वीकेंड की शिफ्ट में ज्यादा कमाई होती है। तो इसलिए कई लोग वीकेंड भी शिफ्ट करते हैं कि डबल कमाई होंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये मुरली है कमाई करने का टाइम, अमृत वेला है कमाई करने का टाइम, कमाई के टाइम सुस्ती अलबेलापन ना हो, तब हमारी कमाई होंगी।
सभी रोज रोज मुरली सुनते हैं सभी लोग
वहां, यहाँ नहीं
घर में भी? वाह बहुत, अपने लिए ताजली बजाओ। दीदी लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय सारे विश्व में महायुद्ध की स्थिति जैसे नहीं तो तैयार हो रही, यूक्रेन का इसका जिक्र हो रहा है सब तरफ, जैसे डर का माहौल तैयार हो रहा है, और कुछ भी हो न्यूज तो आता ही है, सुनते हैं, सबके मन में थोड़ी तो बातें चलती है। तो अब ऐसी परिस्थितियां तो बढ़ती जाएगी, तो ऐसे में हम सबको क्या करना चाहिए, कौन सा अभ्यास करना चाहिए, कौन सी स्थिति रखनी चाहिए, तो हम इसमें से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाए, तो इसके बारे में थोड़ा हम सबको बताइए।
बाबा हमेशा कहते हैं एवर रेडी रहो, कभी भी मौत आ सकता है। युद्ध की बात तो छोड़ो, परंतु अभी देखो कोरोना काल में कितने यंग लोग चले गए, और ऐसे चले गए, तो ऐसी बीच बीच में बीमारियां भी आती है, कैंसर भी हो जाता है, एक्सीडेंट चलते 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 आप चलते हैं, किसी ने टक्कर मारी, गिर गए, ब्रेन में हेमरेज हो गया, खत्म। तो इसलिए क्या है कि हमें एवर रेडी रहना है। जो लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, हमें वो जीवन में लाना है। और एक एक संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क व्यर्थ न जाए, क्योंकि आजकल बाबा इस पर बहुत ध्यान खिंचवाते हैं कि कुछ भी व्यर्थ न जाए। बहुत वैल्यूएबल टाइम है, मारा संकल्प, बोल, कर्म सब वैल्यूएबल है। ऐसे नहीं साधारण करके हम गंवा देवे, व्यर्थ नहीं जाएंगा तो समर्थ बनेंगे, तो हमारी स्थिति भी ऐसी पावरफुल हो कि हम एक रस अचल अडोल रहे। क्योंकि परिस्थितियां दिन प्रतिदिन बिगड़ती जाएंगे, क्योंकि इंडिया में तो कुछ नहीं, श्रीलंका का हाल सुनो, पेट्रोल नहीं, पानी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कुछ नहीं। तो अभी से ही कई देशों में ऐसी परिस्थिति है, युद्ध नहीं है पर आंतरिक युद्ध है, सब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के साथ लड़ते हैं कि प्राइस क्यों इतनी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं योग द्वारा ऐसी स्थिति बनाओ जो खाना भी ना मिले तो भी आप नहीं कहो भूख 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 नहीं करना है, खाना ना मिले, नेचुरल क्लेमिटीज आएंगी, पानी शुद्ध नहीं मिलेगा, हवा शुद्ध नहीं मिलेंगी, रक्त की नदियां बहेंगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं भारत का हाल तो बहुत खराब हो जाएगा, क्योंकि जहां एटॉमिक युद्ध है 5 मिनट में सब खत्म, पर जहां एटॉमिक युद्ध नहीं है तो वहां चिल्ला चिल्ला कर लोग बनेंगे।
थैंक यू दीदी, आपने हमारे सब प्रश्नों का जवाब बहुत ही सटीक अच्छी तरह से शॉर्ट में सबको समझ में आया। तो दीदी जी के सम्मान में थोड़ा खड़े रह के सब तालियां बजाओ जरा। थैंक यू दीदी, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब दीदी हम सबको योग कराएगी, आप सभी आराम से बैठिए। दीदी कोई संकल्प देना है? 5 मिनट अच्छी तरह से कोई एक संकल्प दो, या कमेंट्री भी कर सकते दीदी आप सबके लिए।
ओम शांति। हमें अपने भाग्य पर नाज हो। मामा ने हमें अपनाया, भाग्य विधाता ने हमें अपनाया, कितना भाग्यशाली बनाया। सर्व खजाने हमारे सामने खुले रख दिए। जितना हम चाहें लूट सकते हैं, जितना समय मिले मामा की याद में रहकर खजाना लूटते रहे, अपनी झोली भरते रहे, दुनिया वाले खाली हाथ जाएंगे। हम बाबा से अविनाशी खजाना लेके भरपूर होकर जाएंगे। याद द्वारा हम विकर्म विनाश कर अपने शांति धाम जाएंगे। शांति धाम से बाबा हमें सुख धाम में ले जाएंगे। बाबा आया है हमें स्वर्ग के लायक बनाने। पतित से पावन, बंदर से मंदिर लायक, नरक से स्वर्ग में ले चलने, ज्ञान और गुणों से हमारा श्रृंगार कर रहा है। यही सच्चा श्रृंगार है। जो खरीदने के लिए पैसा नहीं भरना है, सिर्फ बाबा से शक्तियां लेने हैं। तो सारा दिन वहां बाबा, वहां मैं, वहां ड्रामा, ये गीत गाते रहो। खुशी से नाचते रहो, और हर एक को खुशी दिलाते रहो। बाबा से जो खजाना मिला है हमें बांटते रहना है। जितना बांटेंगे उतनी दुआएं मिलेंगी और खजाना बढ़ता जाएगा। ओम शांति।